सुमित ने अगले ही पल कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो, हमने ही बेवकूफ़ी की कि उन दोनों को अकेला छोड़ दिया। हमें लगा था कि कुछ पल वो दोनों साथ रहेंगे तो हो सकता है कि अरमान के मन में आस्था के लिए कोई फीलिंग्स जन्म ले सकें, लेकिन यहाँ तो आस्था का ही पता नहीं, कहाँ गई होगी। इतना बड़ा मॉल है, आस्था को कहाँ ढूंढें हम। ध्रुव ने कहा, भाभी तो कहीं नहीं मिल रही है। चारों के चेहरे पर निराशा नजर आ रही थी। ध्रुव ने जल्दी से कहा, मैं अब अरमान भाई से पूछकर आता हूँ, शायद उन्हें पता हो कि आस्था भाभी कहाँ है। चेंजिंग रूम में आस्था आंखें बंद करके एक तरफ बैठी हुई थी। उसे बहुत ज्यादा खींच खींच कर सांस आ रही थी। उसकी सांसें उखड़ने लगी थीं, क्योंकि जिस चेंजिंग रूम में उसे बंद किया गया था वहां ऑक्सीजन लेवल काफी कम था। ज्यादा देर तक अगर कोई इंसान वहां रह जाता है तो उसकी जान किसी भी पल जा सकती थी। आस्था को उस चेंजिंग रूम में बंद हुए एक घंटे से ज्यादा हो चुका था। इसकी वजह से आस्था को सांस लेने में काफी परेशानी होने लगी और किसी भी पल आस्था की जान जाने वाली थी। वो आधी बेहोशी की हालत में पहुंच चुकी थी। ध्रुव जल्दी अरमान के पास जाकर खड़ा हुआ और घबरा कर बोला, अरमान भाई, आस्था भाभी कहाँ है? हमने पूरा कपड़ों वाला एरिया देख लिया है, लेकिन हमें वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। ध्रुव के थोड़े सख्त लहजे और तेज आवाज में कहने पर अरमान बहुत हैरान हुआ और तुरंत खड़ा होकर ध्रुव की ओर देखने लगा। अरमान के इस तरह से देखने पर ध्रुव के शरीर में कंपकंपी शुरू हो गई थी, लेकिन उसने अपने डर को अपने चेहरे पर आने नहीं दिया और एक बार फिर थोड़ा धीमे लेकिन कड़े शब्दों में बोला, भाई, आस्था भाभी मिसिंग है। ये सुनकर अरमान मन ही मन में सोचने लगा, अब ये आफत की पोटली कहाँ चली गई है। बिना ध्रुव को कुछ कहे अरमान अपना लैपटॉप और आईपैड देव को देता हुआ जल्दी ही उस कपड़ों वाले सेक्शन की ओर चला गया। वहां आकाश, सुमित और आहान को मुंह लटकाए हुए खड़ा देखकर उसने मन ही मन में सोचा, लगता है वाकई वो आफत यानी आस्था मिसिंग है। उसने तुरंत देव को अपने पास बुलाया और बोला, देव, अपने सभी आदमियों को बुलाकर लाओ और उनसे बोलो कि फटाफट से पूरे मॉल में फैल जाएं और पता करें कि वो लड़की कहाँ गई है। साथ ही साथ उसने आकाश, सुमित और बाकी सबको आदेश दिया, तुम लोग खड़े खड़े यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, जाकर ढूंढो उसे कहाँ गई है वो लड़की। याद रखना, अगर वो लड़की नहीं मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरमान की बात सुनकर वो पांचों मन ही मन में काफी इरिटेट हो चुके थे। मुंह बनाकर सोचने लगे कि अरमान ने खुद तो लापरवाही की है, उसने खुद अपनी बीवी पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें गुमा दिया और हम पर इस तरह से हुक्म चला रहा है जैसे सारी गलती हमारी ही है। लेकिन वो पांचों आस्था को ढूंढना चाहते थे, इसलिए जल्दी ही वो सब अलग अलग जगहों पर फैल चुके थे और वो सब हर एक फ्लोर पर जाकर अच्छी तरह से चेक करने लगे। साथ साथ देव ने अरमान के सिक्योरिटी को फोन कर दिया था। काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स वहां मौजूद थे। जल्दी ही सिक्योरिटी गार्ड्स पूरे मॉल में फैल चुके थे, क्योंकि भले ही अरमान ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को दादाजी के साथ घर पर भेज दिया था, लेकिन अरमान की सिक्योरिटी करना उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी इसलिए, और दादाजी को घर छोड़ने के बाद उसके सिक्योरिटी गार्ड्स ऑलरेडी मॉल के बाहर मौजूद थे। जैसे ही देव ने उन्हें फोन किया, वो कुछ मिनटों में सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आ गए। अरमान उसी कपड़ों के सेक्शन में एक जगह बैठ गया और सोचने लगा कि आखिरकार वो लड़की यहाँ से कहाँ जा सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने जो उसे धमकाया था उस वजह से वो यहाँ से चली गई हो, या फिर उसे ये लगने लगा हो कि उसका राज मुझ पर खुल चुका है तो इसीलिए वो आफत यहाँ से भाग गई हो। अरमान सोचने लगा, तुम कहीं भी जाकर छुपो, मैं तुम्हें हर हाल में ढूंढ कर लूंगा, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देकर ही रहूंगा। कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए अरमान का चेहरा खतरनाक लग रहा था। अरमान को रह रहकर लग रहा था कि आज तक किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि वो अरमान सिंघानिया के पूछे बिना बैठ भी जाए, लेकिन ये लड़की अरमान सिंघानिया को बताए बिना ऐसे कैसे जा सकती है? इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी, और अगर वाकई इस आफत को किसी ने मेरी जिंदगी में किसी मिशन के तहत भेजा है तो अब मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि उसकी रूह कांप जाएगी। तभी अरमान को अपने जिस्म पर किसी की गहरी नजरें महसूस हुई। जैसे ही उसने थोड़ा सा साइड में अपनी आईब्रो उठाकर देखा तो उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि मलाइका, जो कि उस वक्त बड़ी गहरी नजरों से अरमान को देख रही थी, अरमान को अपनी तरफ देखते ही वो तुरंत पीछे के साइड में छुप गई, जिसकी वजह से अरमान उसे देख नहीं पाया। तो मलाइका सोचने लगी कि उसे अब ज्यादा देर तक इस मॉल में नहीं रुकना चाहिए, और वैसे भी जिस लड़की को उसने अरमान सिंघानिया के साथ देखा था उसको तो ऑलरेडी उसे ठिकाने लगा ही दिया है, तो उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये सब सोचते हुए मलाइका रैंडम कपड़े देखते हुए धीरे धीरे वहां से खिसकने लगी, लेकिन तब तक अरमान ने देव को कह दिया था कि पूरा का पूरा मॉल पूरी तरह से ब्लॉक कर दो, मेरी मर्जी के बगैर इस मॉल से कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा। जैसे ही अरमान ने यह आदेश दिया, सब उसकी बात मानते हुए अपने अपने काम पर लग गए, और इससे पहले कि मलाइका उस मॉल से बाहर निकल पाती, ठीक उसी वक्त अरमान के सिक्योरिटी गार्ड्स ने पूरे के पूरे मॉल को अपने कब्जे में कर लिया था, और अब जितने भी मॉल में काम करने वाले लोग थे वो सभी एक जगह जमा हो गए थे, और सभी आदमियों को जो जहां था उसे केवल 5 मिनट के अंदर सीधा मॉल का जो फर्स्ट फ्लोर था उन्हें वहां आने के लिए कह दिया गया था। और जल्दी ही जितने भी लोग उस मॉल में मौजूद थे जो शॉपिंग करने के लिए आए थे, साथ साथ जो सेल्स गर्ल और जो वहां पर काम करने वाले स्टाफ थे, वो सभी नीचे हॉल में जमा हो चुके थे। सब कन्फ्यूजन में एक दूसरे को देख रहे थे। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? क्यों हमें इस तरह से यहाँ इकट्ठा किया गया है? क्योंकि अरमान के सिक्योरिटी गार्ड्स के पास बंदूकें थीं। बंदूकों के बल पर उन्होंने जल्दी ही सबको नीचे जमा कर लिया था और तब अरमान ने एक जगह ऊपर सेकंड फ्लोर से ही नीचे खड़े हुए सारे लोगों को देखना शुरू कर दिया था। लेकिन उन सबके बीच आस्था उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी, तो वो कहाँ जा सकती है? इस वक्त तो मॉल में कोई भी मौजूद नहीं है। अरमान ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को मॉल के हर एरिया में चेक करने के लिए भेज दिया, कहीं कोई रह तो नहीं गया। वही मलाइका खून का घूंट पीकर रह गई। जिस तरह से अरमान आस्था को ढूंढ रहा था, उसे रह रहकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और वो सोच रही थी कि आखिरकार ये लड़की है कौन जो उसका बॉस उसे ढूंढने के लिए इतना ज्यादा पागल हुआ बैठा है। लेकिन सीधे तरीके से वो अरमान से कुछ नहीं कह सकती थी और ना ही वो आस्था के बारे में पूछ सकती थी। वो सिर्फ सीक्रेटली उसका पता लगाना चाहती थी कि आखिर ये लड़की है कौन। लेकिन अब तो उसने सोच लिया था कि अब तो वो लड़की कुछ ही देर में मरने वाली होगी, क्योंकि उसने सारी चीज अच्छी तरह से पता की थी कि अगर कोई भी इंसान 3 घंटे से ज्यादा उस चेंजिंग रूम में कैद होकर रह जाता है तो ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से ना मिलने के कारण उसकी जान किसी भी पल जा सकती थी। वहीं दूसरी ओर आस्था को उस चेंजिंग रूम में कैद हुए 1.5 घंटे से ज्यादा हो चुका था। इस बीच उसकी आंखें हल्के हल्के खुल रही थीं, हल्के हल्के बंद हो रही थीं। वो बुरी तरह से आधी बेहोशी की हालत में पहुंच चुकी थी। सुमित, आकाश, ध्रुव और आहान सभी एक जगह इकट्ठे हो गए थे और अरमान के आसपास आकर खड़े हो गए और चारों का मुंह पूरी तरह से उतरा हुआ था।
अब अरमान खुद अंदर ही अंदर थोड़ा सा परेशान हो उठा था कि आखिरकार वो लड़की इस तरह से यहाँ से कहाँ जा सकती है। उसे तो मैंने कपड़े चेंज करने के लिए बोला था और उसके बाद से वो लड़की कहाँ जा सकती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं उसे मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लग गई? अगर आस्था नहीं मिली तो दादाजी क्या सोचेंगे? क्या दादाजी उसे कभी माफ कर पाएंगे? नहीं, मैं हर हाल में उस लड़की को ढूंढ कर रहूंगा। उसकी वजह से मैं अपने दादाजी को किसी भी कीमत पर नाराज नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए अरमान ने जल्दी ही सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने पास बुलाया और कहने लगा, फटाफट से इस एरिया और चेंजिंग रूम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ और चेक करो, वो लड़की जब मेरे साथ थी ठीक उसी वक्त की फुटेज चलाओ। अब अरमान ने जैसे ही सीसीटीवी फुटेज मंगवाई और उसे चेक करने का फैसला किया, अब तो वो सेल्स गर्ल और साथ ही मलाइका दोनों की आंखें हैरानी से फैल चुकी थीं, क्योंकि वो सेल्स गर्ल पैसों के चक्कर में ये बात भूल चुकी थी कि मॉल के हर एक एरिया में, हर एक केबिन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और सेल्स गर्ल आस्था को बंद करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो गई होगी, तो उसके लिए ये ठीक नहीं होगा। क्योंकि इस वक्त अरमान के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे सभी के हाथों में बंदूकें थीं और सभी एक से बढ़कर एक हथियार लिए हुए थे। कहीं ना कहीं वो सेल्स गर्ल सोच रही थी कि इस बात का पता चलेगा तो अरमान उसके साथ क्या करेगा, उसे कौन सी सजा देगा। क्योंकि जिस तरह से सभी सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथों में बंदूकें थीं और साथ ही अरमान का खतरनाक ओरा देखकर वो सेल्स गर्ल अंदर तक कांपने लगी थी और उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उसने तो सोचा था कि आस्था एक मामूली सी लड़की है और जो लड़की उसे इतना ज्यादा पैसा दे रही थी, मलाइका, अपनी किसी पर्सनल रीजन की वजह से उसने जलन के मारे उसे बंद करवाना चाहती है, तो बस यही सोचकर उसने उसे वहां पर बंद करवा दिया था। लेकिन अब तो आस्था को इस तरह से ढूंढता हुआ देखकर उसके माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया था और कहीं ना कहीं उसे लगने लगा था कि अगर सीसीटीवी फुटेज में अगर वो शो हो गई तो तब क्या होगा। अब वो सेल्स गर्ल टांगे खड़े खड़े ही कांप रही थी। मलाइका भी उस सेल्स गर्ल को कहीं नजर नहीं आ रही थी। मलाइका ने अपने चेहरे को कवर कर लिया था ताकि वो सेल्स गर्ल अब मलाइका को देख ना पाए, क्योंकि अपना काम होने के बाद मलाइका उसे किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखना चाहती थी और वो चुपके से वहां से निकलने की फिराक में थी। वहीं दूसरी ओर जल्दी ही अरमान और सभी एक साथ खड़े होकर अब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने लगे और उसमें वो सीन दिखाए जाने लगा जब अरमान ने रैंडम एक ड्रेस उठाकर बिना उस ड्रेस की ओर देखे आस्था को थमा दी थी। वहीं आस्था कभी उस ड्रेस को देखती, फिर अरमान को देखती है और फिर अपने आसपास देख रही थी। तब अरमान ने जैसे ही ये फुटेज देखा, एक पल को वो भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया था, उसे भी बहुत अजीब सा लगने लगा था। लेकिन उसके बाद उसने आगे फुटेज देखना शुरू कर दिया। आस्था वो कपड़े लेकर चेंजिंग रूम की तरफ फिर जा रही थी और जल्दी ही वो चेंजिंग रूम में चली गई थी। उसके बाद उस फुटेज में वो सेल्स गर्ल 5 से 10 मिनट गुजरने के बाद वहां आई थी। उसने अपने आसपास चारों तरफ अच्छी तरह से देखा और जल्दी ही उसने उस चेंजिंग रूम का दरवाजा बाहर से लॉक बंद कर दिया था। अरमान ने और बाकी सबने जैसे ही ये फुटेज देखा, उनकी आंखों से आग बरसने लगी, क्योंकि जब भी कहीं किसी के साथ गलत होता था या फिर इस तरह की हरकत किसी पर होती थी, उन चारों का खून अपने आप ही खौलने लग जाया करता था। और अब अरमान ने जल्दी ही उसे मॉल के सिक्योरिटी गार्ड्स वालों को बुलाकर खतरनाक आवाज में कहा कि मुझे ये लड़की अभी इसी वक्त यहाँ चाहिए। और फिर अरमान जल्दी से उस चेंजिंग रूम की ओर भाग कर गया जहां पर आस्था को कैद किया गया था। आस्था जो कि आधी बेहोशी की हालत में थी, अब तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी।
और जैसे ही अरमान हड़बड़ाहट से उस चेंजिंग रूम के बाहर गया और तुरंत दरवाजा खोल दिया। आस्था जो कि दरवाजे से पिट लगाकर बैठी हुई थी, तुरंत बेहोश आस्था का गर्दन उस दरवाजे के खुलते ही बाहर की ओर छूम सी गई थी और अरमान ने जल्दी से आस्था को गिरने से पहले उसे अपने हाथों में संभाल लिया था। उसकी नजर आस्था के पहने हुए कपड़ों पर गई। उसने देखा कि बेहोश होने की वजह से आस्था जैसे ही गिरी, तुरंत उसका दुपट्टा जो उसने अपने शरीर पर लपेट रखा था वो तुरंत ही उसके शरीर से सरक गया था। अरमान की आंखों के सामने आस्था का खूबसूरत जिस्म रिवील होने लगा था, लेकिन अरमान ने जल्दी से आस्था को दुपट्टे से फिर से कवर किया, क्योंकि इस वक्त इतना टाइम नहीं था कि फिर से आस्था के कपड़े बदले जा सकें।